नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। यह हादसा बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने ट्रेन के डिब्बे में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। प्रशासन की टीमें ट्रेन के कोच से निकालने में जुटी हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही 12,506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे शाम करीब 9:35 पर ट्रैक से उतर गए। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रात 12 बजे तक इस हादसे में 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। हादसे में बड़ी संख्या में यात्री घायल बताए जा रहे हैं, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की तरफ से बताया गया कि हादसे वाली जगह पर एक्सीडेंट रिलीफ वाहन को मेडिकल टीम और अधिकारियों के साथ रवाना किया गया है। इसराइल और हमास के बीच शनिवार को शुरू हुए युद्ध का आज 6 दिन है। 4 दिन में दोनों तरफ से 2100 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर के देश लड़ाई में फंसे या युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे अपने लोगों को घर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच भारत ने बुधवार को घोषणा की कि वो गुरुवार से इसराइल और फिलिस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर रहा है। भारत सरकार स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स के माध्यम से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान करेगी, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर भारतीय नौसेना के जहाज़ों को भी सेवा में लगाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जो हमारे नागरिक इसराइल से वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर रहे हैं। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेश में हमारे नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वो पार्वती कुंड एवं जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे तथा पिथौरागढ़ में लगभग 4200 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन नेपाल सीमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा महत्वपूर्ण होने वाला है। सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी 3 घंटे के प्रवास न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास के द्वार खोलेगा बल्कि ये चीन को संदेश देने का काम भी करेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दौरे की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड के जन जन के कल्याण और राज्य के तेज विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसे और गति देने के लिए पिथौरागढ़ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करूंगा। यहाँ के गुंजी गांव में लोगों से संवाद का सुअवसर भी मिलेगा। अपने इस दौरे में आध्यात्मिक महत्व के पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम में दर्शन और पूजन की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा है। अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की जीत की नींव रखी। उन्होंने 84 गेंद पर 141 रन की पारी खेली। उन्होंने भारत की ओर से वर्ल्ड कप में दूसरी बार शतक का खाता खोला। इस मामले में उन्होंने पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग की बराबरी कर ली। वीरू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा बार ऐसा किया है। उन्होंने लगातार 3 वर्ल्ड कप में ऐसा किया है। वर्ल्ड कप में भारत के लिए शतक का खाता खोलने वाली सूची में दिग्गज कपिल देव, सुनील गावस्कर और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। तेंदुलकर, सहवाग और रोहित को छोड़कर सभी ने एक एक बार ये कमाल किया है। कपिल देव ने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक जड़कर सबसे पहले ये कारनामा किया था। ये भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे पहला शतक था। 1975 और 1979 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से कोई शतक नहीं लगा था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को कहा कि अगर मणिपुर जैसी घटना होती है तो पार्टी की महिला इकाई को मामला दर्ज होने की चिंता किए बिना सड़कों पर उतरना चाहिए। एनसीपी की महिला इकाई के सदस्यों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि पैतृक संपत्ति में महिलाओं को हिस्सा देने के उनके सरकार के फैसले को सही से लागू नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारे पास मणिपुर सबसे बड़ा उदाहरण है जहां महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, व्यक्तिगत हमले किए गए और हत्या कर दी गई। अगर ऐसा कुछ होता है एनसीपी की महिला इकाई को सड़क पर उतरना चाहिए। वो आपके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार और आपराधिक धमकी के मामले में उन्हें तलब किया है। अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने FIR रद्द करने की रिपोर्ट, शिकायतकर्ता की दायर विरोध याचिका, जांच अधिकारी की विरोध याचिका पर दाखिल जवाब और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री पर गौर करने के बाद ये पाया है कि शिकायतकर्ता ने पुलिस अदालत मजिस्ट्रेट के सामने CRPC की धारा 164 के तहत एक समान बयान दिए हैं। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर FIR रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने पुलिस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा, रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल करते समय जांच अधिकारी द्वारा उठाए गए मुद्दे ऐसे मामले हैं जिन पर सुनवाई के दौरान निर्णय लिया जा सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iinsatta.com पर नमस्कार।